केवल घर में नहीं, केवल बाहर नहीं, सर्वत्र सबसे, सारा संसार ही उनके लिए एक छिन्नालय हो जाता है, जहाँ नीरस हृदयहीनता से उन्हें शिक्षा दी जाती है, और जो कुछ अधिक संपन्न होते हैं, उन्हें एकाएक इस भांति शिक्षित नहीं किया जाता। उनकी शिक्षा का आरंभ घर में या स्कूल में होता है, और संसार वाली शिक्षा का समय जहाँ तक हो सकता है स्थगित किया जाता है। लोहे के कड़े बनते हैं तो लोहा भट्टी में पिघलाकर एकदम सांचे में ढाल दिया जाता है, किंतु सोने के कड़े बनाने के लिए पहले उसे गर्म किया जाता है, फिर उसका तार बनाया जाता है, फिर उसे गोल करके टांका जाता है, फिर उस पर काम किया जाता है, फिर अंत में पॉलिश किया जाता है, तब कहीं वह तैयार होता है। ऐसे ही है निर्धन और धनिक बालकों की शिक्षा। इसे सौभाग्य कहूँ कि दुर्भाग्य, वह एक संपन्न घर में उत्पन्न हुआ था। उसकी शिक्षा उसके अनुरूप एक कॉन्वेंट स्कूल में आरंभ हुई, एक यूरोपियन कॉन्वेंट स्कूल की लताओं से आच्छादित दीवारों द्वारा घिरे हुए छोटे से उद्यान में लड़के और लड़कियों का एक समूह। उस समूह के एक और कॉन्वेंट की सिस्टर उस समूह की अध्यापिका खड़ी है। उसका मुख वात्सल्यपूर्ण है, बाल पकने लगे हैं और उसकी आंखों में एक विनोद का सा भाव है। वह थोड़ा सा तुतलाती है, और यह विशेष रूप से तब प्रकट होता है जब वह हिंदी बोलने का प्रयत्न करती है। वह समूह उद्यान के मध्य में स्थित है, और उसके बालक बालिकाएं गंभीर भाव से मनोरंजन कर रहे हैं। एक लड़का मध्य में खड़ा है, उसके हाथ में एक लकड़ी का हथौड़ा है और सामने एक लकड़ी का ही आहरण। अन्य बालिक बालिकाएं उसको घेरे हुए हैं। वह बालक लोहार का अभिनय कर रहा है, और ज्यों ज्यों वह आहरण पर हथौड़ा मारता है, त्यों त्यों अन्य बालक बालिका समवेत स्वर में पुकार कर गाते हैं, दे मार हथौड़ा लोहा है तैयार, और वृत्ताकार घूमते जाते हैं। सिस्टर बहुत प्रश्न हो रही है, क्योंकि बच्चे उस खेल में तलीन जान पड़ते हैं। उनके चेहरे गंभीर है अवश्य, किंतु यह शायद उसकी उपस्थिति के कारण ही है। वह हट जाएगी तो बच्चे अधिक स्वच्छंद होंगे और अधिक आनंद पाएंगे, यह सोचकर वह चुपचाप उद्यान से निकल जाती है। चुपचाप, किंतु चुपचाप नहीं कि बच्चे ना जान पाए। उसके बाहर निकलते ही प्रत्येक को पता लग गया कि वह स्वच्छंद है, और इस स्वच्छंदता का उपयोग भी तत्काल हो गया, क्योंकि 1 मिनट के भीतर ही दो बालक लड़ पड़े, भिड़ गए और बाकी सब ने पक्ष ले लिए। लगभग 10 मिनट तक घमासान रहा, फिर एकाएक ही शांत हो गई, क्योंकि किवाड़ खुल गया था और सिस्टर ने प्रवेश किया था। और अब उसके चेहरे पर वह वात्सल्य भाव नहीं था, न आंखों में वह विनोद। उस कॉन्वेंट में छात्र पिटते नहीं थे। उस दिन लगभग 4 बजे शेखर घर की ओर चला जा रहा था, धीरे धीरे किसी विचार में लीन। उसकी जॉकेट के बटन में एक टाइप किया हुआ कार्ड लगा हुआ था। वह पढ़ नहीं सकता था कि उस पर क्या लिखा है, किंतु अनुमान कर सकता था, क्योंकि सिस्टर ने उसे कहा था इसे अपने पिता को अवश्य दिखाए और उत्तर लेकर आए। और फिर वो बोली थी, तुमने बहुत शरारत की है। वह इतना गंभीर इसलिए था कि वह किसी निश्चय पर पहुंचना चाहता था। उसने सिस्टर के शब्दों में शरारत की थी, किंतु अवश्य या कोई कारण नहीं था कि वह घर जाकर पीटे। उसकी न्याय बुद्धि कह रही थी, मैंने दूसरों को मारा, स्वयं भी मार खा ली, अब घर पहुंचकर दोबारा दंड क्यों पाऊं। उसने निश्चय कर लिया, कार्ड उतारा, फाड़कर चिथड़े कर दिए और फेंक दिया। घर पहुंचकर पिता से बोला कि मैं अब लड़कों के स्कूल में जाना चाहता हूँ, काफी बड़ा हो गया हूँ, उस कॉन्वेंट में लड़कियों के साथ नहीं पढ़ूंगा। पिताजी ने हंसकर कहा, अच्छा। वैसे सिस्टर की विनोद भरी आंखें बार बार याद आने लगी, जो उसकी ओर कार्ड के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही होगी, और वह याद उसके लिए कितनी आहत कर थी। वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, उसे करने दो प्रतीक्षा, मैं जाऊंगा स्कूल स्कूल। यद्यपि वह तब तक स्कूल भी नहीं गया। ऊपर कहा गया है कि सोने की वो धीरे धीरे नरम किया जाता है, एकदम ढाला नहीं जाता। जब शेखर ने कॉन्वेंट स्कूल छोड़ दिया, तब उसकी पढ़ाई का कोई और प्रबंध सोचा जाने लगा, और जब तक यह निश्चित नहीं हुआ, उसे स्वसंजता मिली। बालक को जब पढ़ाया जाता है, तब वह विद्रोह करता है, किंतु जब विद्रोही को ही छोड़ दिया जाता है, तब उसकी स्वाभाविकता जिज्ञासा उसे व्याध करती है। उसके बड़े भाई जब अपने मास्टर से पढ़ने बैठते हैं, तो वह स्वयं जाकर उनकी मेज के पास खड़ा हो जाता, क्योंकि कोई उसे वहां खड़ा रहने पर बाध्य नहीं करता था। वह इतना छोटा था कि मेज तक पहुंचने ना पाता। तब वह पंजों पर खड़ा होकर हाथों से मेज का किनारा पकड़ लेता और उस पर थोड़ी टेक कर सुना करता। उसके भाई और उनका मास्टर हंस देते, किंतु कुछ कहते नहीं, उसकी ओर ध्यान भी नहीं देते। ऐसे ही कई दिन रहा। एक दिन पिता पढ़ाई देखने आए। भाइयों को अष्टाध्यायी पढ़ते देखकर बोले, आज का पाठ सुनाओ तो क्या कुछ याद है? उन्होंने आरंभ में तो अच्छी तरह कहा, किंतु बीच में भूल गए, घबरा गए, चुप रह गए। पिता ने वात्सल्य भरी हंसी हंसकर कहा, पढ़ो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और जाने को भी कहें। तभी उसने अपनी किंचित बैठी हुई आवाज में, जो व्यग्रता से कांप रही थी, कहा, मैं सुनाऊं? सब हंस पड़े, पर पिता की अनुपति सूचक मुस्कुराहट से उसकी ओर देखने लगे। वह बहुत देर नहीं रही, थोड़ी ही देर में उन सब के चेहरे पर विस्मय छा गया, क्योंकि उस छोटे से बालक ने उस दिन का ही नहीं, उससे पहले और उससे पहले और उसके एक कई पहले दिनों के पाठ जबानी सुना दिए, बिना क्षण भर भी रुके हुए। उसके पिता ने प्रश्न होकर, ऐसे जैसे पुरस्कृत कर रहे हो, कहा, कल से तुम भी पढ़ो, तुम्हारे लिए अलग मास्टर रख देते हैं। हाय रे पुरस्कार! हाँ तो दूसरे दिन उसका नया मास्टर आया, किंतु आया ही रहा बहुत दिन नहीं। आरंभ के 3-4 दिन बाद ही मास्टर साहब ने आकर देखा, उनका शिष्य एक कुर्सी की पीठ पकड़े व्रजवर्त अपना सिर उस पर पटकता जा रहा है, बार 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 बार। मास्टर साहब ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? अपने को पक्का कर रहा हूँ, कहकर वह फिर अपने काम में लग गया। मास्टर साहब ने यह नहीं जाना कि बालक ने कहीं किसी बात में सुना था। वह बड़ा पक्का निकला और इस कथन में प्रशंसा की ध्वनि पाकर उसने निश्चय किया कि मैं पक्का होऊंगा। मास्टर साहब ने हंसकर कहा, देखूं तो कितने पक्के हो, मुझसे टक्कर लोड़ पाओगे? आहन, उसने कहा, आइए। एक दिन टक्कर हुई। सब बालक ने दूसरों के लिए सिर पीछे झुकाया तो देखा मास्टर साहब की हंसी उड़ गई है। वे हाथ से माथा थाम लेते हैं, जैसे अपने को सहारा दे रहे हो, और फिर उठकर बाहर चल जाते हैं और फिर नहीं आते, क्योंकि ऐसे कितने मास्टर हैं जो यह नहीं समझते कि पढ़ाई तभी तक संभव है जब तक शिष्य पर गुरु का रोब रहे। कुछ दिन बाद एक नया मास्टर आया, लखनऊ का, और उसके अंग अंग पर लिखा गया था कि वह लखनऊ का है। वह पढ़ाने बैठा मुंह में पान लेकर, और जब बालक डिक्टेशन लिखने लगा तब बार बार भूमि में थूक कर उसका ध्यान भंग करने लगा। बालक ने उद्दत स्वर में कहा, मास्टर साहब, आप पढ़ाते हैं कि थूकते ही जाते हैं? मास्टर साहब ने पिता की रिपोर्ट की। पिता ने बालक को डपट कर कहा, क्या शैतानी करते हो, पढ़ना है कि नहीं? बालक उसी स्वर में बोला, पढ़ूं कैसे, कोई पढ़ाए भी? मास्टर साहब तो थूकते ही जाते हैं। पिता ने समझा तो कि बालक की बात में कुछ सार है, किंतु वे बालक से ऐसा उत्तर पाने के अभ्यस्त नहीं थे। क्रुद्ध होकर बोले, बको मत, जाकर पढ़ो, अब मैंने कोई शिकायत सुनी तो। बालक चला गया। उसने देखा न्याय कहीं नहीं है, किंतु वह अन्याय के आगे झुकने को भी तैयार नहीं हुआ। सिर झुकाए ही पढ़ने के कमरे में गया, किंतु वहां पहुंचते ही मास्टर को देखकर उद्धृत और ललकार भरे स्वर में बोला, थुक्कू मास्टर। मास्टर साहब ने चौंक कर कहा, क्या? थुक्कू मास्टर, थुक्कू मास्टर। बालक बार बार ऐसे कहने लगा जैसे हथौड़े से किसी चीज पर चोट कर रहा हो। उस दिन इतनी ही पढ़ाई हुई, कम से कम मास्टर साहब के सामने। जब मास्टर साहब चले गए तब उसे कमरे में बंद कर दिया गया। रोटी नहीं दी गई, कहा गया वचन दो कि ऐसा नहीं होगा, पर नहीं, बालक थक कर सो गया, वहीं रहा तब तक जब तक कि दूसरे दिन फिर पढ़ाई का समय नहीं हो गया और उसे मास्टर साहब के सामने नहीं उपस्थित किया गया, और उसने फिर उसी प्रकार कहना आरंभ नहीं किया, थुक्कू मास्टर, थुक्कू मास्टर। उसे ले गए और दूसरी प्रकार की शिक्षा दी जाने लगी, पर मास्टर साहब फिर नहीं आए। यूं समाप्त हुआ उसे शिक्षा का पहला परिच्छेद। इसके बाद उसकी बहन उसे पढ़ाने लगी, किंतु उसका ढंग कुछ और ही था। इसके बाद उसकी बहन उसे पढ़ाने लगी और बालक ने देखा शिक्षा भी ग्राह्य हो सकती है और शिक्षक भी उपास्याय हो सकता है, और वह अपने बहन की पूजा करने लगा और सीखने लगा बिना किसी के जाने। किंतु वह तो बाद में हुआ, उसकी बात यथास्थान होगी। ऐसा ही था उसका मन, उसमें सहज बुद्धि की कमी नहीं थी, किंतु उस बुद्धि की प्रवाह गति का निर्देश करने का शक्ति संसार में नहीं थी। वह बुद्धि उसकी थी, उसके उपयोग के लिए थी। वह उसका मनचाहा उपयोग करता था, और वह जानता है जहाँ उसने अपनी सहज बुद्धि की प्रेरणा मानी वहाँ उसे उचित किया, और जहाँ उसकी बुद्धि को दूसरों ने प्रेरित किया वहाँ वह लड़खाया। यह बुद्धि बांधी जा सकती तो क्या नहीं संभव था? किंतु यह बुद्धि बांधी नहीं जा सकती। यही थी उसकी शिक्षा, जिससे उसने सीखा क्या शिक्षण का तिरस्कार, अवज्ञा। पर उन दिनों भी उसने बहुत कुछ सीखा, और सीखने हेतु दृढ़ मनोनियोग से कि उस शिक्षा की छाप उसके मानस पट के रेशे रेशे पर पड़ी हुई है और मिट नहीं सकती। उस शिक्षा के तंतु उसके जीवन के ही ताने बाने में मिल गए हैं, और वैसे ही चमकते हैं जैसे शिलाखंड में किसी श्रेष्ठ धातु की रेखा। उस स्वतः प्राप्त होने वाली शिक्षा का रहस्य क्या था? शेखर अपने घर के बरामदे में खड़ा था। घर में सब लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। उसके भाई तब अपनी पढ़ाई में निरत थे, पिता तो दफ्तर का काम देख ही रहे थे, और माँ उसके छोटे भाई को गोद में सुलाए रोटी पका रही थी। वह अकेला था, अनुभव कर रहा था कि मैं अकेला हूँ, और यह अनुभव कर रहा था कि मैं अकेला इसलिए हूँ कि मैं उसी प्रकार का नहीं हूँ जिसे लोग अच्छा कहते हैं। मैं पढ़ता नहीं हूँ, किसी का कहना नहीं मानता, ढीठ हूँ, लड़ाका हूँ, शैतान हूँ। नहीं तो आज इस समय पिता के पास हंस रहा होता, या माता के पास कुछ मिठाई खा रहा होता, या भाइयों के साथ ही कोई सचित पुस्तक पढ़ रहा होता, जिसके स्थान में सबका भुलाया हुआ यहाँ अकेला खड़ा हूँ। सब वहाँ आकर खड़ा हुआ था। उसके कुछ ही देर बाद पिता के कोई मित्र उनसे मिलने आए थे, और उन्होंने उससे पूछा था, पिताजी है? और उससे उत्तर ना पाकर उसका ध्यान आकृष्ट करने में भी असफल होकर यह सोचते हुए भीतर चले गए थे कि क्या ऐसे भी बालक हो सकते हैं जिन्हें नए आदमी को देखकर कौतूहल ना हो। इस बात को घंटे भर से अधिक हो चुका था, और बालक वहीं उसी मुद्रा में खड़ा था और अपने छोटे से अनुभव की बात को लेकर सोच रहा था। तभी वे मित्र बाहर आए और उसे खड़े देखकर भीतर लौट गए, उसके पिता को साथ लेकर आए, और उसे मालूम नहीं हुआ कि वे कई मिनट तक उसे देखते रहे हैं। इस विस्मय से भरे कि जो सिंसियर चांचल्य के लिए बना है वह इतना स्थिर कैसे खड़ा है, और जो बालक सामान्य बालक से भी अधिक दुर्निवार है वह इतना प्रशांत कैसे है? एकाएक वह पिता का प्रश्न सुनकर चौंका। शेखर, क्या सोच रहे हो? और कुछ सकपका कर बोला, कुछ नहीं। किंतु पिता को शायद उसकी निश्चिंतता देखकर कुछ परिताप हुआ था या दया आई थी। वे कुदरे नहीं हुए आगरा से पूछने लगे, जिसे वह नहीं टाल सका। वह एक इतनी नई चीज थी। बोला, मैं सोच रहा था कि बुरे के बगैर अच्छा नहीं होता। वे एकाएक समझे नहीं, बोले, क्या मतलब? लोग बुरे को देखते हैं तभी उन्हें पता लगता है कि क्या अच्छा है। बुरा नहीं हो तो क्या पता लगे कि अच्छा क्या है? वे दोनों क्षण भर स्तब्ध रह गए, एक दूसरे की ओर देखते रहे। फिर पिता ने शायद यह सोचकर कि छोटे मस्तिष्क के लिए बड़ी समस्या का आकर्षण अच्छा नहीं हो सकता, उससे कहा, चलो अंदर चलकर खेलो कूदो, बड़े होकर ये बात सोचना। यद्यपि यह डॉक्टर नहीं, किंचन सराहना के स्वर में कहा। पर बालक सोचने लगा, अगर बड़ा होने पर ही सोचना होता तो मैं आज ही सोचकर बड़ा क्यों ना हो जाऊं। इसके बाद उसके पिता उसने उसके विषय में चौकन्ने रहने लगे। जब भी उसे अकेला या विचारशील पाते तो उसे खेल में लगाने या किसी बात की ओर आकृष्ट करने लगते। उसने अब देखा उसे एकांत बहुत कम मिलता है, यद्यपि वह यह भी समझता रहा कि वह है अब भी अकेला ही, बल्कि इस अनभ्यस्त सजगता ने उस अकेलेपन को और भी विशिष्ट कर दिया था। इसके 2-4 दिन बाद ही ऐसी ही घटना फिर घटी। वह फिर वैसे ही वहीं खड़ा था, सामने की कमानों की ओर देखकर एक और समस्या पर विचार कर रहा था, जो उसी दिन प्रातःकाल उठी थी। सब उसे प्रार्थना करना सिखाया गया था। वह उन मकानों को देखकर सोच रहा था, ये सब ईश्वर ने क्यों बनाए होंगे, कैसे बनाए होंगे। तभी उसके पिता ने आकर पूछा, फिर क्या सोच रहे हो? उनके पीछे माता भी थे, वे भी उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। उसने गंभीर स्वर में कहा, ये सब मकान किसने बनाए? माता हंसी, बोली, लोगों ने और किसने? उन्होंने शायद सोचा यह बालक खपती है, पर इसको बहलाए रखना ठीक है। तब ईश्वर ने तो नहीं बनाए, बालक ने कहा तो प्रश्न के तौर पर, किंतु इसमें एक अविकल्पता थी, मानो वह किसी पहले पूछे प्रश्न का उत्तर है। माता पिता ने संप्रभात दृष्टि से एक दूसरे की ओर देखा, बालक ने वह दृष्टि भी देखी। तब पिता बोले, आओ मैं समझाऊं, ईश्वर ने ही बनाए हैं। बालक उसके अनुसरण करता हुआ भी यह सोचता रहा, अगर इस प्रश्न का हल इतना सुगम और निश्चित है, तब ये उस संप्रभात दृष्टि का कारण क्या है और क्यों? उसका मनोरंजन करने के लिए, उसे व्यस्त रखने के लिए पक्षी खरीदे गए, एक जोड़ा मरालों का, एक चकोरों का, एक तोता, और इन पक्षियों का चार्ज उनमें बांट दिया गया। मराल बड़े भाई को, चकोर दूसरे को, और तोता उसके हिस्से में आया। वह बड़े मनोयोग से तोते को सिखाने लगा। उसे आदेश मिला था तोते को सीताराम कहना सिखाएं, और उसके माता पिता भी तोते के पास कहते आते, पढ़ सीताराम, और वह भी उनके सामने यही कहता। किंतु जब भी एकांत पाता, तोते के सामने आकर खड़ा होकर हंसता, बार बार रुक रुक कर वह एक कृत्रिम हंसी का इस इच्छा से कि तोता भी हंसना सीख जाए। पर तोते ने ना सीताराम पढ़ना ही सीखा, ना हंसी ही। एक दिन उसके पिता ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और उसे हाथ में लेकर मिर्च खिलाने लगा। बालक ने पूछा, क्यों? तो बताया कि जब तोते को मिर्च लगती है तब वह बोलता है। बालक ने कहा, लाइए मैं खिलाऊं। पिता ने तोता उसे दे दिया। तोते ने उसके हाथ से भी मिर्च खाई। इधर उधर घूमकर उसके हाथ से अपने पंख निकाल लेने की चेष्टा करने लगा। बालक दृढ़ होकर मिर्च उसकी चोंच में जबरदस्ती ठूसने का प्रयत्न करने लगा। तोते ने उसकी उंगली में काट लिया और उंगली छोड़ी नहीं। बालक ने तोते को छोड़कर हाथ को जोर से झटक कर उंगली छुड़ा ली। बालक अपनी आहत उंगली को देखता रहा। तोता उड़कर घर के सामने एक पीपल के वृक्ष पर जा बैठा। जब बालक को तोते का ध्यान आया, तब उसकी आंखें उसे खोजने लगी और थोड़ी ही देर में उसने उसे पा लिया और मुग्ध होकर उसकी ओर देखने लगा। बालक का तोते के प्रति क्रोध हट चुका था। वह उसकी ओर हाथ बढ़ाकर उसे बुलाने लगा, मियाँ मिट्ठू। तोते ने ध्यान नहीं दिया। बालक ने देखा, तोता धीरे धीरे डरते डरते पीपल की एक डाल से उड़कर दूसरी पर बैठता है, दूसरी से तीसरी पर। ऐसा जान पड़ता था मानो पंख डर कर इसलिए फड़फड़ाता है कि कहीं पिंजड़े की परिधि से टकराए ना, आहत ना हो। और जब उसने देखा कि वह हिल डुल कर भी पिंजड़े से नहीं टकराता, तब वह पेड़ से उड़कर एक बिजली के खंभे में बैठ गया, जो घर से अधिक दूर था, और फिर यहाँ से दूसरे खंभे पर। बालक को जान पड़ा, वह अपने को विश्वास दिला रहा है कि अब पिंजरे को खींचने से घिरा नहीं है, बाहर हूँ, स्वच्छंद हूँ। और फिर से एकाएक आहत और अभिमान से भरकर उड़ा और उड़ गया दृष्टि की सीमा से परे। बालक ने एक लंबी सांस लेकर गंभीर स्वर में पिता से कहा, तोता उड़ गया। पिता ने उस स्वर को गंभीरता के लक्ष्य करते हुए कहा, तो क्या हुआ, तुम्हें और ले देंगे? पर वह बोला, नहीं, और तोता नहीं पालूंगा। पिता हंसकर बोले, क्यों, उंगली में काट खाया इसलिए? और अनेक पक्षी हैं, कोई पाल लेना, पर साथ चलकर चुन लेना, खरीद कर। नहीं, अब कोई पक्षी नहीं पालूंगा। तब कभी कभी उसे विचार आता, इन मरालों और चौकरों को भी भगा दिया जाए, पर शायद यह विचार कि ये पिंजरों में बंद नहीं है, उड़कर जा सकते हैं, फिर भी इच्छा से नहीं रहते या नहीं जाते, उसे रोक देता था। एक बार उसका मंझला भाई बीमार हुआ, और बहुत बीमार हुआ। बहुधा दिन में ज्वर के कारण वह प्रलाप करने लगता। और तब सदा ही कहता, मेरे चकोर लाओ, मेरे चकोर कहाँ है, मेरे चकोर। और चकोर लाकर उसके पास बिठा दिए जाते, वह उसके ऊपर हाथ रख कर शांत हो जाता, सो भी जाता। वह काफी क्षीण हो गया था। एक दिन उसके ज्वर का ताप इतना अधिक हुआ कि उसका प्रलाप भी बंद हो गया। वह शून्य सा अधमूर्छित सा छत की ओर देखता पड़ा रहा। उसने चकोर नहीं मांगे, पर वे स्वयं आए। उसके माता पिता उसके पास चिंतित खड़े थे। उन्होंने देखा एक चकोर आकर उसके सिरहाने बैठ गया और एक धीरे धीरे चारपाई के चक्कर काटने लगा। और उन्हें ऐसा जान पड़ा उस कमरे के वातावरण में किसी अपूर्व घिंचाव के अनुभव चकोर भी कर रहे हैं, और साथ ही अपने मांग ना होने के कारण दुखी है। जो चकोर रोगी की चारपाई को चक्कर काट रहा था, उसकी गति धीरे धीरे उद्रभ्रांत होती जा रही थी। पैर लड़खड़ा से रहे थे और उसका जोड़ा चकोरी जो रोगी के सिरहाने बैठी थी चिंतित से उसे देख रही थी, पर अपने स्थान से हटती नहीं थी। चकोर थक कर रोगी के पैताने बैठ गया। उसकी ग्रीवा मानो निद्रा में झुक गई, उसका शरीर ढीला पड़ गया। थोड़ी देर बाद सबने देखा उसका शरीर लुढ़क कर एक ओर गिर गया और अकड़ने लगा। उसके थोड़ी देर बाद ही रोगी ने मूर्छना से प्रलाप की अवस्था में आकर कहा, मेरे चकोर। कुछ दिन बाद रोगी अच्छा हो गया। ना जाने क्यों तब तक वह एक चकोर से तुष्ट रहता, दूसरे को उसे ध्यान ही नहीं हुआ। किंतु जब वह चारपाई से उठा तब उसने मांगा, दूसरा चकोर कहाँ है? किसी को उसे बताने का साहस नहीं हुआ। थोड़ी दिन बाद चकोरी भी चुपचाप वहां से हटा दी गई और दे दी गई। उसे कभी-कभी याद आ जाता और वह पूछ बैठता, मेरे चकोर। खिन भी हो जाता, किंतु वह धीरे-धीरे उन्हें भूल गया और उनके विषय में सत्य को भी जान गया। शेखर के पास इसका कोई संतोषजनक हल नहीं है और वह इसके बारे में कोई राय नहीं बना सकता। वह इतना ही जानता है, उसने कुछ सीखा है और बड़ी गहरी स्वीकृति से सीखा। क्या सीखा यह बात वह नहीं बता सकता। शायद विश्वास, शायद निष्ठा, शायद पता नहीं क्या। मरालों का क्या हुआ उसे याद नहीं। शायद वे दे दिए गए क्योंकि वे उन चकोरों के स्मारक थे। वे पक्षी शेखर के जीवन से निकल गए। उसके बाद घर में और पक्षी भी नहीं लाए गए, किंतु क्या शेखर के मन से वे निकल गए? शेखर ने देखा उसके संसार के अलावा एक और संसार है जिससे पक्षी रहते हैं, जिनमें स्वच्छंदता है, जिसमें विश्वास है, जिसमें स्नेह है, जिसमें सोचने की या कि खेलने की आभास स्वतंत्रता है, जिसका एकमात्र नियम है वही हो तो जो कि तुम हो, और वह संसार उसके लिए एक स्वर्ग, एक अत्यंत वांछित स्वप्न हो गया। उसकी कुल यंत्रणाओं से उन्मुक्ति का द्वार, उसके अकेलेपन में उसका सहारा। इससे क्या कि उसकी सभी धारणाएं झूठी थी। इससे क्या कि उस दूसरे संसार में भी वे सब कठोरताएं, वे सब उत्पीड़न, वे सब असत्य विद्वान थे, जिनके कारण उनका मन पहले से संसार से परे भागता था। इससे क्या कि जो वस्तुएं पहले संसार में स्वप्न मात्र थी, वह इस दूसरे संसार में स्वप्न का भी अस्तित्व नहीं रखती थी और थी ही नहीं। उसका एक सहारा चाहिए था और वह उसे एक काल्पनिक संसार से मिला। इसलिए यह कल्पना सच्ची है, सात्विक है, इसलिए वह संसार और रहेगा। एक दिन वह संध्या के समय एक बाग में आया। उस समय वह मानो पक्षियों भर था और वे सब अनियंत्रित वाणियों में से अपने प्राणों को आहार कर रहे थे। कितना मधुर आहार्द! बालक ने पूछा, क्या यही जंगल है? क्योंकि उसने सुना था पक्षियों का घर जंगल है। उत्तर मिला, नहीं, यह बाग है। जंगल क्या होते हैं? वे भी ऐसे ही होते हैं, बहुत बड़े बड़े बाग से, पर जैसे इनमें पेड़ और फूल सजा कर लगाए हैं ऐसे नहीं होते, अपने आप उल्टे सीधे लगते हैं। बालक ने सोचा, कितना उन्मुक्त होगा वह स्थान जहाँ कुछ तो स्वतंत्र होगा ही। ये पौधे भी स्वतंत्रता से उग फूल फल सकेंगे, और तब उसकी कल्पना के स्वर्ग को एक मूर्त आकार भी मिलता और एक नाम भी मिला, जंगल। और आज तक वन उसके लिए वह है जो नगर कभी नहीं हुए ना होंगे। आज उसका वह पहला स्वप्न वह उस उच्च शिखर से उतर आया है। जंगल अब स्वर्ग नहीं रहे हैं, किंतु उस वन प्रेम को पुष्ट करने वाली भी बहुत से बातें हुई है। और आज भी वह इस पिंजड़े में बद्ध होकर वनों का ध्यान करता है, जहाँ उस तोते की तरह भी वह भी पंख नहीं फड़फड़ाता कि पिंजड़े से चोट ना लगे, क्योंकि वह भी अनुभव से सीख चुका है कि चोट लगती है। पर क्या उसकी आत्मा भी बद्ध है? क्या उसके भी चोट लग सकती है? क्या वह भी पंख नहीं फड़फड़ाता सकती? वह आत्मा विचरती है अपने वनों में, जहाँ उसका स्वर्ग है अबाध, किंतु वह सब उसके शिक्षण, स्वतः प्राप्त शिक्षण का एक पहलू ही था। उसकी शिक्षा उससे कहीं विस्तृत क्षेत्र में हो रही थी। यूँ कहा जाए जा सकता है कि यह शिक्षा उसका शिक्षा का मूल मंत्र था, वह अंश था जो भूमि के नीचे अदृश्य रहता है। इसने उसके चरित्र का स्थायित्व दिया था, किंतु उस चरित्र की बनाने वाली शिक्षा, उसकी शिक्षा का वह अंश जो भूमि के ऊपर दृश्य होकर काम करता था और वह था पहली शिक्षा, उसके स्थायित्व देती थी तो या उसे गति देती थी। पहली ने उसमें गौरव जताया था तो दूसरी ने प्रवाह की दिशा इंगित की। उसके खेल के साथियों में एक लकड़ी भी थी जिसका नाम कोई नहीं जानता। सब उसे फूला कहकर संबोधन करते थे। वह उसे पड़ोस में रहने वाली विधवा की लड़की थी। फूला ने उन सबको खेलों में शामिल होती थी और खेल ही खेल में वे दोनों एक दूसरे के घर में भी प्रवेश कर जाते। उसमें बाल कुचित पूर्ण स्वच्छंदता थी, किंतु एक दिन उसे घर से आज्ञा मिली कि वह यदि पड़ोस के घर में भी चली भी जाए तो वहाँ कुछ खाए पिए नहीं, कुछ भी ग्रहण ना करे, क्योंकि वह छोटी जात के हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या और लोग भी उनके साथ नहीं खाते? तो उत्तर मिला, नहीं, अच्छी जात का कोई नहीं खाता। तो फिर उनके साथ क्यों खाते हैं और क्यों बोलते हैं? तो उत्तर नहीं मिला। उसने फिर पूछा तो उत्तर मिला, सिर मत खाओ, तुम्हें जो कहा जाए मान लिया करो, बहुत बातें मत बनाया करो। बालक चला गया। उस दिन वह खेल में से कुछ अलग सा करने लगा, विशेषतः जब फूला उपस्थित होती थी। इसलिए नहीं कि वह विशेष आज्ञाकारी हो गया था, केवल इसलिए कि वह चाहता था कि पहले कोई हल कर लिया जाए, किसी निश्चय पर पहुंच जाया जाए। और इसी के लिए वह खेल में भी सोचता रहता था। इस समस्या का हल 4-5 हजार वर्ष में भी नहीं पाया है कि किंतु बालक के आत्मविश्वास के आगे 4-5 हजार वर्ष क्या चीज है? वह काल की गति पहचानता ही नहीं। उसके लिए केवल दो अवस्थाएं हैं, प्रकाश और अंधकार, जागृति और निद्रा। इसके लिए उसके वास्ते काल की गति का अस्तित्व ही नहीं है। उसके लिए केवल प्रकाश और अंधकार का संघर्ष। उन दिनों तक वे घर के भीतर सोते थे, किंतु तब से उन्होंने कोठे पर सोना आरंभ कर दिया, क्योंकि गर्मी आ गई थी। उनके कोठे के साथ ही सटा हुआ उस विधवा के घर का कोठा था और उस बीच की दीवार भी उसकी अधिक ऊंची नहीं थी, अतः उसके ओर की बातें दूसरी ओर सुन पड़ती थी। बालक जब सोने आता तब कभी कभी फूलों का खिलाकर हंसना उसे उषा तक पहुंचाता और वह उस समस्या उसके आगे फिर आ रह जाती। अभी जब तक वह सुनता फूला कि माँ उसे पुकार कर कहती, फूला आ रोटी खा ले, तक उसे जान पड़ता कि वे अत्यंत दुखी होकर खाने बैठे हैं, क्योंकि कोई उसके साथ खाने को तैयार नहीं होगा। उसे लगता वे मानो छिप कर चोरी से खा रही है, क्योंकि वे किसी के सामने बैठकर खाने के हकदार नहीं है। वह सोचता यह खाना खा सकती होगी। वह अक्सर सुनता खाना खाने के बाद माँ बेटी हंसती खेलती थी और खेल में वह अंश भी था। कभी कभी माँ बेटी से पूछती, फूला हम लोग कौन हैं? और उसने हंस हंस पर या पता नहीं कहनेती थी। कहने पर उसे समझ जाती, तू कह हम हैं। बालक ने एक दिन माँ से पूछा, क्या होता है? तो माँ ने उसे बताया था कि एक छोटी सी जात का नाम है, और फिर अंगूठे से साथ वाले घर की ओर इशारा करके कहा था, ये लोग है ना। और उस दिन से बालक सोचा करता, यदि यह छोटी जात है तो वह इस छिपाते क्यों नहीं? क्या कारण है कि माँ अपनी बेटी को बार बार याद दिलाती है, और माँ के स्वर में अभिमान भी होता है? बालक के मन में यह प्रश्न ही रहा। वह दूर बैठे उस विधवा की पूजा तक करने लग गया जो इस बात का अभिमान कर सकती है। फूला भी उसके लिए एक पदलित देवी सी हो गई, किंतु उसका उसके घर जाना नहीं हुआ। वह नित्य रात को उनकी हंसी सुनकर सोचता, मैं भी इनके घर खेल में शामिल हो सकूं। किंतु दिन में वह उसके घर के बाहर रुक जाता और लौट आता, ना जाने क्यों। आज वह समझौता है उस भाव को, आज वह उस भयंकर यंत्रणा का भी कुछ अनुमान कर सकता है, जिसे भोग चुकने के बाद ही उस विधवा माँ ने एक स्वरक्षात्मक अस्त्र की तरह यह अभिमान प्राणों में भरा होगा, और यह भी समझ सकता है कि किस दृप्त अवमानना के भाव से वहाँ फूला को यह अभिमान करना सिखाती होगी। आज सब वह जानता है कि इस प्रकार यह समस्या दूर नहीं हो सकती। यह अभिमान अनुचित है, किंतु यह जानकर भी उस व्यवस्था से सहानुभूति और संवेदना का अनुभव करता है। आज वह समझता है कि कैसे यहूदी लोग संसार के सबसे अपमानित और प्रपीड़ित जाति होकर उसी अपमान और प्रपीड़न से अपने जीवन शक्ति पाते हैं, अवज्ञा से भर कर झुकते हैं और नष्ट नहीं होते। किंतु आज जो फल वह ज्ञान के वृक्ष से तोड़ रहा है, उसका विष बीज वहीं बोया गया था उसी दिन। उसके बहुत दिन बाद की 20 वर्ष बाद की एक बात मुझे याद आती है। उन दिनों जब मैं भागा फिरता था आत्मरक्षा के लिए, एक दिन ज्येष्ठ की कड़ाके की धूप में और एक और व्यक्ति 20 मील चल कर आए थे। प्यास बहुत लगी थी, पानी कहीं दिख नहीं पड़ता था। हम सड़क पर चुपचाप चले जा रहे थे। एकाएक हमें सामने से आता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, यहाँ कहीं पानी मिलेगा? यहाँ आसपास तो नहीं, वहाँ इधर नदी है, वहाँ होगा। कितनी दूर? यही कहीं 3-1 मील है। मुझे एक विचार आया, मैंने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? उसने एक और इशारा करके कहा, यहाँ पास ही मेरा घर है, उस झुरमुट के पीछे। तो वहाँ तो पानी होगा? नहीं जी, ए घर में पानी नहीं होगा। तो तुम्हारा काम कैसे चलता है? वह चुप। मैंने फिर कहा, चलो पानी पिला दो ना, बहुत प्यासे हैं। वह फिर चुप। मैंने कहा, तुम नहीं आते तो ना सही, हम वहीं मांग लेंगे, वहाँ कोई है। वह फिर चुप, किंतु थोड़ी देर बाद बोला, बाबूजी आप कौन जात हैं? हम जात पात तो नहीं मानते ही नहीं, पर वैसे अगर तुम्हें कोई डर है तो हम हैं ब्राह्मण, तुम्हारे बर्तन भ्रष्ट नहीं होंगे। नहीं वह बात नहीं, कहकर वह चुप रहा। फिर बोला, आप आगे ही जाकर पी लीजिएगा। हम कुछ आशा हुई थी मिट्टी में मिल गई। मैंने कहा, आखिर तुम पानी क्यों नहीं पिलाते? तब उसने विवश होकर उत्तर दिया, बाबूजी हम छोटी जात के हैं। मैं एकाएक हंस पड़ा, बस यही बात थी, हम जात नहीं मानते, तुम हमारे बराबर हो। नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा तुम नहीं पिलाओगे तो हम खुद पी लेंगे, बताओ रास्ता किधर से है? नहीं बाबूजी। या मेरे साथी को कुछ क्रोध आ गया, शायद प्यास बहुत अधिक थी। वह बोला, कैसा आदमी है, दिन भर तो मेला ढोता है, अब इतनी अकड़ कर कि पानी नहीं पिलाएगा। मैं उसे रोकने को ही था कि वह व्यक्ति एकाएक तनकर बोला, बाबूजी आप हमें जो चाहे समझे, हमारे काम को बुरा मत कहे, हम ईमान का पैसा खाते हैं। मैंने सोचा, एक साथ ही इतने दीन विषय और इतना अभिमान, और मैंने सोचा कि यह उचित ही है, हम पानी ही नहीं पिला नहीं सकते। वह आगे चल पड़े, पर यदि सूत्र ऐसा ही होता तो भी कुछ बात थी। मैं जानता हूं कि यह नहीं सही है, कई जगह ऐसी अवज्ञा या आत्मविमान नहीं है, वहां है केवल दैन्य संपूर्ण दशात्व वहाँ माता पिता अपने बच्चों को बोध कराते हैं, अवज्ञा के लिए नहीं स्वीकृति के लिए झुकना सिखाते हैं, अभिमान से नहीं दासत्व भाव से। आत्माएं इस संबंध में इस तरह जकड़ी गई है कि वे स्वयं नहीं जानते किस श्रृंखला में बंधे हैं और स्वयं उसकी कहानियाँ पक्की करने में सहायक होते हैं। वह अभिमान भरी अवज्ञा इस समस्या की सर्वोत्तम हल तो नहीं है, किंतु एक हल अवश्य है, निश्चित और स्वाभाविक भी।